भागवत सार की श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद के सातवें अध्याय पर चर्चा है। इसके श्लोक पर को पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। अशेष संग अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष असीम संक्लेश कष्टमय स्थिति शमम शमन विद्धते संपन्न कर सकता है। गुण अनुवाद दिव्य नाम रूप गुण लीला पार्षद तथा साज सामग्री इत्यादि का श्रवणम सुनना तथा कीर्तन करना। मुरारे मुरारी श्री कृष्ण का किम वा और अधिक क्या कहा जाए। पुनः फिर तत् उनके चरण अरविंद चरण कमल पराग सेवा सुगंधित धूल की सेवा के लिए रति ही आकर्षण आत्मलब्धा जिन्होंने ऐसी आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु ते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोच तकर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारुत्कंठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। तो ये विभाग इस अध्याय का चल रहा है, पांचवें अध्याय से जो प्रारंभ हुआ, जहां सर्ग सृष्टि की रचना का वर्णन हो रहा है। और पिछले अध्याय में मैत्रेय मुनि ने वर्णन किया कि कैसे ये भौतिक जगत प्रकट होता है, अलग अलग तत्व आते हैं। और अब इस अध्याय में विदुर और प्रश्न कर रहे हैं। तो पहले 7 श्लोकों में विदुर के प्रश्न दिए गए हैं। विदुर जी ने कुछ प्रश्न किए बड़े महत्वपूर्ण, अब आगे के प्रश्न। तो उन्होंने सुन लिया सृष्टि की रचना, तो उनके मन में संशय हो गया। वैसे कहना चाहिए संशय हुआ नहीं था, लेकिन ज्ञान को प्रकट कराने के लिए उन्होंने इस तरह के प्रश्न पूछे कि मानो वो अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं हैं कुछ। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न किए। इन प्रश्नों में इनके 2 प्रमुख विषय थे, एक भगवान और दूसरा जीव। तो इन 2 विषयों के लिए प्रश्न किए विदुर जी ने मैत्री मुनि से। भगवान के विषय में प्रश्न किया और जीव के विषय में। भगवान के विषय में प्रश्न करते हुए वो कहते हैं कि वो भगवान जो दिव्य हैं, जिनका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सुना कि भगवान महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, विराट रूप को प्रकट करते हैं और सब चीज़ों में प्रवेश करते हैं, सब चीज़ों से संपर्क में आते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान तो दिव्य हैं, तो फिर ऐसे दिव्य भगवान ये 3 गुणों को कैसे प्रभावित कर, 3 गुणों के कैसे प्रभाव में आ जाते हैं, या ऐसे भगवान ये 3 गुणों को क्यों स्वीकार करते हैं? वो तो दिव्य हैं, उनका इन गुणों से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर वो 3 गुणों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? कैसे इस भौतिक जगत को वो स्वीकार कर लेते हैं या उनका संपर्क 3 गुणों से आता है? और फिर वो कहते हैं कि मान लीजिए कि ये भगवान अपनी इच्छा होती है, भगवान की इच्छा। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी इच्छा होती है वो कुछ खेल करता है। तो अगर ये माना जाए कि भगवान की कोई इच्छा थी इसीलिए भगवान ये खेल कर रहे हैं, तो कहते कि भगवान तो आत्मा राम है, पूर्ण संतुष्ट हैं, तो फिर उनको ये इच्छा कैसे आती है खेल करने की? हाँ, एक बालक को आ सकती है, छोटा बालक है वो तो आत्मा राम नहीं है, उसकी इच्छा होती है वो कुछ खिलौनों से खेलता है। भगवान तो पूर्ण आत्मा राम है, पूर्ण संतुष्ट हैं अपने आप में, पूर्ण विरक्त हैं। जब उनके अंदर पूर्ण विरक्ति है, पूर्ण संतुष्टि है, कोई इच्छा नहीं है, फिर वो ऐसे कार्य क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है इस सृष्टि का, उनका इस सृष्टि से जुड़ने का? और फिर जीव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव जो आध्यात्मिक है, शुद्ध चेतना में है, वो कैसे इस भौतिक जगत में फंस जाता है? क्योंकि आध्यात्मिक चेतना वाले को, उसको तो बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। कैसे ही मोह में आ जाता है, कैसे अज्ञान में आ जाता है? तो मूल अवस्था में प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि जीव शुद्ध है, उसका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब जीव का भौतिक जगत से लेना देना नहीं है, तो विदुर जी का प्रश्न है कैसे वो फंस जाता है इसमें, और इतना फंस जाता है कि भूल जाता है अपनी चेतना को, भगवान को, भगवत चेतना को। तो क्या होता है, कैसे वो फंस जाता है? तो ये प्रश्न उन्होंने किए। और फिर उन्होंने कहा, मान लीजिए वो फंस भी जाता है, तो फंस कर उसको इतने कष्ट क्यों होते हैं? जब भगवान सामने उपस्थित होते हैं उसके साथ में, तो फिर जीव को कष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान तो सारे आनंद को प्रदान करने वाले हैं, और शास्त्रों में कहा गया है भगवान हमारे साथ हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण ये प्रश्न है विदुर जी के, कि एक तरफ तो जीव है जो मूल है, शुद्ध अवस्था में है, मूल अवस्था में, तो वो शुद्ध जीव बद्ध कैसे हो जाता है? और बद्ध होकर भी भगवान की उपस्थिति में कष्ट पाता है, ये बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान हैं, और भगवान सामने साथ में उपस्थित हैं जीव के, फिर भी वो कष्ट भोग रहा है, तो ये कैसे है? तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किए। तो आठवें श्लोक से आगे करीब 14वें श्लोक तक मैत्रेय मुनि विदुर के जितने भी संशय हैं इनको दूर करते हैं, उत्तर के द्वारा, अपने उत्तर के द्वारा उसको संशय को दूर करते हैं। तो मैत्रेय मुनि उदाहरण देते हैं जीव की स्थिति का और भगवान की स्थिति का। तो जीव की स्थिति का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जैसे मानो एक व्यक्ति स्वप्न देखता है। तो अब ये उदाहरण के द्वारा विदुर जी को समझा रहे हैं, दो उदाहरण उन्होंने दिए अपने उत्तरों में। पहला उदाहरण, पहला दृष्टांत उन्होंने दिया कि जैसे मानो स्वप्न में कोई व्यक्ति ये देख लेता है कि उसका सर कट गया, तो ये स्वप्न में देख रहा है सर कट गया, ये भी वो देख रहा है। तो सर कटने के बाद कैसे दिख सकता है? अगर किसी का सर काट दिया जाए तो क्या वो देख पाएगा अपने सर और धड़ को अलग? लेकिन स्वप्न में कभी कभी दिखता है कि सर कट गया, तो सर कट गया मतलब वो हुआ नहीं है, वो स्वप्न है। क्योंकि अगर हुआ होता तो वो देख नहीं पाता। इसी तरह वो बताते हैं कि जीव इस जगत में बद्ध होता है, भौतिक लक्षणों को धारण करता है, लेकिन ये केवल एक स्वप्न के समान है। मूल अवस्था कभी उसकी विचलित नहीं होती, शुद्धता कभी नहीं जाती। जीव सदैव मूल अवस्था में शुद्ध है, पूर्ण ज्ञान में है, लेकिन क्योंकि स्वप्न के जैसे स्थिति में, जैसे व्यक्ति अगर स्वप्न में ये देख रहा है कि उसका सर कट गया, लेकिन उसका सर तो नहीं कटा, वो तो वैसे ही है, लेकिन प्रतीत होता है। इसी तरह जीव को प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न में उसको लगता है कि मेरा सर कट गया, ऐसे जीव को प्रतीत होता है कि वो कष्टों में है, वो भौतिक दुखों में है। और एक प्रश्न करते हैं भगवान के विषय में। मैत्री मुनि उत्तर देने के लिए प्रश्न करते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि भगवान माया के अधीन आ जाते हैं, जैसे विदुर ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे गुणों को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान को जो माया के अधीन मान लेते हैं कि भगवान माया के अधीन आते हैं, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं कि भगवान मुक्त हैं, तो मैत्रेय मुनि कहते दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? कोई मुक्त जीव माया के अधीन कैसे आ सकता है? इसको समझना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि वैसे तो भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान मुक्त हैं, नित्य मुक्तो, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो माया में पड़ जाते हैं, इसीलिए शरीर धारण करते हैं, वैसे उनका स्वरूप नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। वैसे उनका स्वरूप नहीं है लेकिन जब यहां आते हैं तो माया में पड़ जाते हैं, इसीलिए ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो फिर से भगवान बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, केवल भूल गए हैं, माया में हैं इस समय। जब ये माया चली जाएगी हम फिर भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसे अज्ञानियों के लिए मैत्रेय मुनि प्रश्न करते हैं कि अरे विदुर ये बताओ कि अगर भगवान माया के अधीन आते हैं, एक तरफ आप बोलते हो माया के अधीन आ जाते हैं, दूसरी तरफ बोलते हो कि वो मुक्त हैं, तो मुक्त हैं तो माया के अधीन कैसे आएंगे? ये बात ठीक नहीं है, मैत्रेय मुनि कहते हैं। तो अर्थात तो क्या कह रहे हैं कि पूछना चाहिए कि अगर भगवान स्वतंत्र हैं तो अपनी ही शक्ति माया के अधीन कैसे आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और फिर तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान लेना पड़ता है, तब याद आता है कि मैं भगवान हूं। ये हो नहीं सकता। और फिर जीव का कहते हैं कि स्वप्न है। दूसरा एक बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं चंद्रमा का। वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा जल के ऊपर उसका प्रतिबिंब पड़ता है और जल हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता हुआ प्रतीत होता है, जल को काटा जाए ऐसे पता चलता चंद्रमा भी कट गया है, जो भी जल में क्रिया होती है ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा कर रहा है, लेकिन चंद्रमा को देखा जाए तो मूल अवस्था में वो स्थिर है, वो हिल नहीं रहा है, ये तो केवल उसका जो प्रतिबिंब जल पर दिखाई दे रहा है वो हिल रहा है, तो प्रतिबिंब भी नहीं हिल रहा, जल हिल रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है। तो इसी तरह वो उदाहरण देते हैं कि मूल अवस्था में भगवान ये चंद्रमा के समान है, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, भगवान चंद्रमा के समान है, और जैसे चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं जल पर और जल हिलने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा हिल रहा है, ऐसे ही भगवान से निकलने वाले जीव जो भगवान की शक्ति हैं, वो जब भौतिक जल, भौतिक सृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक सृष्टि गुणों के मिश्रण के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण दरअसल वो जीव कष्ट भोग रहा है, लेकिन जैसे प्रतिबिंब हिलता नहीं है केवल प्रतीत होता है, ऐसे ही जीव कष्ट नहीं भोगता केवल प्रतीत होता है क्योंकि मोह में है। तो जो व्यक्ति प्रतिबिंब को देखेगा वो तो यही कहेगा कि ये चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति चंद्रमा को देखेगा वो कभी नहीं कहेगा कि चंद्रमा हिल रहा है। तो जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, मोह में रहता है, वो ये सोचता है कि मैं कष्ट में हूं, मैं दुख पा रहा हूं, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कृष्ण को देख लेता है, भगवान को देख लेता है, चंद्रमा को देख लेता है, वो जान जाता है कि कोई कष्ट नहीं है, ये केवल मोह है। और ऐसी बातें करने के बाद वो कहते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में कि कैसे भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट भी होते हैं और उनसे विलग भी रहते हैं। तात्पर्य में एक बहुत सुंदर उदाहरण जादूगर का देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी एक जादूगर जादू के द्वारा गाय बन जाता है। प्रभुपाद गाय का उदाहरण देते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई रूप ले लेते हैं, आप में से कुछ लोगों ने जादू देखा होगा, कभी कभी वो शरीर को काट देते हैं फिर वो वापस प्रकट हो जाता है, उसको बंद करके, ऐसे कई जादूगर हुए, अभी पता नहीं है कि नहीं, तो सबके सामने उनको एक बहुत बड़े संदूक में, एक बहुत बड़े बॉक्स में बांध कर, हाथ पांव बांध कर, उसको ताला लगा कर, सब तरफ से सबके सामने उठाकर पानी में फेंक दिया जाता था, लेकिन वो फिर बाहर आ जाता था। तो जादूगर, प्रभुपाद समझाते कि कोई जादूगर मानो अपने आप को गाय बना लेता है, तो जादूगर गाय नहीं है, वो गाय नहीं है, लेकिन फिर भी गाय जादूगर से अलग नहीं है, क्योंकि जादूगर ने अपने आप को गाय बना लिया। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझाते हैं इस उदाहरण से कि जादूगर गाय नहीं है, वो तो केवल जादू के द्वारा दिखला रहा है आपको, आपको लग रहा है वो गाय है, वो गाय नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आप देख रहे हो वो जादूगर से अलग नहीं है, क्योंकि उसके ही रूप, परिवर्तित रूप आप देख रहे हो। इसी तरह प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान अपने आप को इस विराट रूप के, इस जगत के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन वो है नहीं, इससे अलग है वो, लेकिन फिर भी जैसे जादूगर और गाय इसको अलग नहीं माना जा सकता, भगवान और भौतिक जगत को अलग नहीं माना जा सकता। फिर दोनों चीजें वो बताते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानी, मैं सारे जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं। तो भगवान है भी और उससे अलग भी है। तो भगवान अपनी शक्तियों से इस जगत का निर्माण भी करते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से अलग रहते हैं। तो ये समझाने के लिए प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि भगवान कभी भौतिक जगत में लिप्त नहीं होते। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं नमे कर्माणि लिम्पन्ति, कि हे अर्जुन, मैं कभी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। क्यों दिव्य हैं? क्योंकि भौतिक गुणों के कारण मैं प्रकट नहीं होता, कर्मों के कारण मैं प्रकट नहीं होता, बद्ध होकर मैं प्रकट नहीं होता। दिव्य है मतलब अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। तो ये भगवान हैं, और कौन जान सकता है इसको, मैत्री मुनि कहते हैं। तो जब उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दे दिया विदुर के कि किस तरह भगवान अलग भी हैं और एक भी हैं, और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से जान सकते हैं, तो आत्मा की पहचान भगवान वासुदेव की कृपा से, विरक्त भाव से, भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा, ये जो हमारा मोह है इसको कम किया जा सकता है। तो अब वो भक्ति का गुणगान प्रारंभ करते हैं कि ये व्यक्ति मोह में है, अब मोह कैसे कम किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि उस भ्रांति को भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, और वो भक्ति विरक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं, विरक्त भाव से, भगवान की सेवा से धीरे धीरे हम भ्रांति को कम कर सकते हैं। तो तीन चीजें उन्होंने कही। तो भ्रांति को कम करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? पहली चीज चाहिए विरक्त भाव, दूसरी चीज उस विरक्त भाव में भक्ति, और तीसरी चीज भगवान की कृपा। अर्थात वो कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हृदय में विरक्ति आती है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम, वैराग्य बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी कोई कह सकता है कि हम लोग तो कई समय से भक्ति कर रहे हैं, कोई वैराग्य नहीं आया है हृदय में। थोड़ा बहुत तो आ जाता है, तुरंत आ जाता है। व्यक्ति अपने साधारण कार्यों को छोड़कर भगवान की सेवा करने लगता है, मंदिर आने लगता है, समय व्यतीत करने लगता है, तो ये वैराग्य है कि बाकी चीजों से उसको वैराग्य आ रहा है कृष्ण में। हाँ, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होता है। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम। तो वैराग्य बहुत जल्दी आता है। तो उस विरक्त भाव में जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो विरक्त भाव होता है और उसको देखकर भगवान की कृपा आती है। तो ये तीनों चीजें चाहिए भ्रांति से दूर होने के लिए, मैत्री मुनि कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये तीनों चीजें, भगवान की कृपा विरक्ति कैसे हो सकती है, जब व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। जब इंद्रियां परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद के बाद सब दूर हो जाता है। गहरी नींद के बाद कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को बहुत कष्ट होते हैं, बहुत अच्छी नींद ले लेता है तो फिर से शरीर तैयार हो जाता है सेवा के लिए। तो इसी तरह मैत्री मुनि कहते हैं कि जब कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की संतुष्टि में लगाता है, जैसे भगवान की सेवा में, यहां पर भगवान की सेवा के महत्व को वर्णन कर रहे हैं मैत्री मुनि, कि केवल सेवा ही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कष्टों से दूर जा सकते हैं। तो इस सेवा के महत्व को वो कहते हैं। तो इसीलिए मैत्री मुनि समझा रहे हैं, पहले उन्होंने बताया कि विरक्त भाव में भगवान की भक्ति करने से भगवान की कृपा आती है जिससे मोह दूर जाता है, लेकिन वो कैसे होगा, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और इतना कहने के बाद फिर इस श्लोक को, जिस श्लोक को हमने पढ़ा, वो उसको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम इत्यादि का कीर्तन और श्रवण मात्र से मनुष्य के कष्ट समाप्त हो सकते हैं। फिर उनके बारे में क्या कहा जाए, किम व पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिमात्म लब्धा। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की सेवा के प्रति रति उत्पन्न कर ली है, या फिर रति उसमें भगवान के चरण रज की, पराग रति। तो चरण रज का वर्णन क्यों किया गया, चरण रज का वर्णन मतलब उन लोगों की जिन्होंने चरण रज का आश्रय ले लिया है, अर्थात भगवान के भक्तों की। और इसको आगे विदुर जी समझाएंगे। तो यहां पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन में रुचि ले लेता है तो फिर स्वाभाविकता धीरे धीरे उसके जीवन से सारी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो जी भक्ति का प्रारंभ है भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करना, उनके नामों को सुनना, फिर भगवान की सेवा में लगना, भगवान की सेवा से विरक्त भाव उत्पन्न करना, विरक्त भाव उत्पन्न करके भगवान की भक्ति करना और फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करना। तो ये भक्ति का मार्ग इन श्लोकों में मैत्री मुनि देते हैं। तो करीब 14वें श्लोक तक वो, आज जो अभी हमने पढ़ा, इस तक वो उत्तर देते हैं। और फिर उसके बाद विदुर जी धन्यवाद देते हैं। तो आगे 15वें श्लोक से और करीब 5 श्लोकों तक विदुर जी धन्यवाद भी देंगे और अपने जो अनुभव है उसको वो प्रकट करेंगे, अपने साक्षात्कार को वो प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं जब उन्होंने ये सुना तो विदुर जी ने मैत्री मुनि से कहा कि मेरे सारे संशय दूर हो गए, आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि कैसे भगवान हैं भी भौतिक जगत में और नहीं हैं, कभी लिप्त नहीं होते, दिव्य रहते हैं, और जीव की अवस्था को भी आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया और इस मोह से बाहर निकलने का मार्ग भी। और फिर वो कहते हैं कि केवल आपकी कृपा से, आपकी सेवा से मैं इसको जान सकता हूं। अर्थात विदुर अपने उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान हमें मिला है, नहीं तो जीव अज्ञान में रहता है, बद्ध रहता है, कुछ जान नहीं पाता और उसी अवस्था में उसको आनंद मानता है, कष्ट को आनंद मानता है। प्रभुपाद तात्पर्यों में एक उदाहरण देते हैं एक सुअर का। प्रभुपाद कहते कैसे व्यक्ति हर अवस्था में अपने आप को आनंदित मानता है, तो सुअर का उदाहरण देते। सुअर कैसी अवस्था में है, गंदगी में रहता है, गंद मल को खाता है, लेकिन वो अपने आप को सुखी मान रहा है उसमें। वो उसका सुख नहीं है, असली सुख नहीं है जीव का सुअर होकर मल खाना, लेकिन वो उसी में अपने आप को सुखी मानता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे ही जो मनुष्य केवल इंद्रिय भोग में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, उसमें ही सुख ढूंढते हैं, तो वे सब भी उसी सुअर की तरह हैं, अज्ञान में हैं, असली आनंद में नहीं हैं। तो फिर मैत्री मुनि को ये बताते हैं विदुर जी कि आपके कारण, आपकी सेवा के कारण मैं जान सका, और भक्तों की सेवा बड़ी दुर्लभ है। विदुर जी को कहते हैं कि भक्तों की सेवा पाना बड़ा दुर्लभ है। जो व्यक्ति भक्तों की सेवा कर लेता है, गुरु की सेवा कर लेता है, वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे विदुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेति व्रह पादयोर् व्यसनार्दनः। वो कहते हैं गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं, और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि केवल गुरु की सेवा से ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कौन लोग भक्तों की सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं? वो जिन्होंने पुण्य किए हैं, जिनके बहुत से पुण्य हैं। इसीलिए हम लोग रोज भी कहते हैं, स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पुण्य स्वल्प हैं, बहुत थोड़े हैं, उनको विश्वास नहीं होता। किस में विश्वास नहीं होता? भगवान के नाम में, वैष्णवों में, नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, तो उनको विश्वास नहीं होता। गोविंद में, महाप्रसाद में। तो ये जो कहा जाता है, हम लोग रोज जो कहते हैं, उसको समझना चाहिए, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे। कभी कभी लोग नमो ब्रह्मणी कहते हैं, नाम ब्रह्मणी है। तो नाम मतलब भगवान का नाम, इसलिए नमो नहीं कहना चाहिए। तो चार चीजों में जिनके पुण्य बहुत स्वल्प हैं, उन लोगों को विश्वास है। स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते, जायते ने उत्पन्न होता है। तो किस में विश्वास नहीं होता? चार चीजों में, महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में और वैष्णवों में। तो चार चीजों में किस उसको विश्वास उत्पन्न नहीं होता। तो यहां पर भी विदुर जी उसी बात को कहते हैं कि जिन लोगों की तपस्या अति अल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। मतलब विदुर जी क्या कह रहे हैं कि हमें दुख होना चाहिए अगर हम भक्तों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे अभी पुण्य बहुत कम है, हमारी तपस्या कम है। जिनकी तपस्या अति अल्प है, बहुत कम है। तपस्या कम है मतलब जो बहुत अभी भोगों में पड़े हैं, जो बहुत आसक्त हैं, जिनसे भौतिक चीजें छूट नहीं रही हैं, जो केवल आनंद लेना चाहते हैं, तपस्या नहीं करना चाहते, ऐसे लोग कभी भी भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर सकते। विदुर जी कहते हैं शुद्ध भक्त शत प्रतिशत भगवान की महिमा के गान में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा जीवों के नियंता हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की वो सेवा नहीं कर पाते। विदुर जी कहते हैं, अर्थात विदुर जी ये समझा रहे हैं कि जो अभी अभी मैत्रेय मुनि ने बताया कि जीव मोह में रहता है, स्वप्न देखता है, चंद्रमा के प्रतिबिंब को असली मान लेता है, ऐसी भ्रांति, ऐसे मोह और ऐसे अज्ञान से दूर जाने के लिए भक्तों की सेवा आवश्यक है। और भक्तों की सेवा क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है। ये भक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि हमें कृष्ण का दास बनना है। गोपी भरतेव पद कमलेर दास दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें क्या बनना है, गोपी भरतु, जो गोपियों के स्वामी हैं उनके चरणों के दास दास दासानुदास, दासों के दास के दास के दास बनना है, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में यही प्रार्थना करते हैं, क्या बनना चाहता हूं मैं आपके तव भृत्य 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 भृतस्य भृत्य, सात बार वो कहते हैं। सीधे नहीं कहते कि आपके दास का दास बनना चाहता हूं। राजा कुलशेखर कौन है, आलवारों में से एक है। तो वो कहते हैं तव भृत्य, आपके जो दास हैं उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनना चाहता हूं मैं। ये भगवान के भक्तों की स्थिति है, ये असली भक्ति है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जो कहता है कि मेरा दास है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो भगवान ये कहते हैं। तो भक्तों को बहुत महत्व दिया गया है। पद्म पुराण में भी शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। सारी आराधनाएं जितनी आराधनाएं दी गई हैं शास्त्रों में, विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। तस्मात परतरम देवी, उससे भी परे एक श्रेष्ठ आराधना है तदिया नाम। तदिया नाम मतलब जो भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, सम अर्चनम, उनकी अर्चना उनकी पूजा। तो यहां यही बात को विदुर जी धन्यवाद देते हुए और अपने साक्षात्कार को प्रकट कर रहे हैं कि मैं जान गया हूं कि जब तक भक्तों की सेवा नहीं होगी, जब तक आप जैसे महान भक्तों की मैं सेवा नहीं करूंगा, तब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या जरूरत है भक्तों की सेवा की, सारा ज्ञान तो दिया है, भागवत में दिया है, भगवद गीता में दिया है, क्या हम पढ़कर ज्ञान नहीं ले सकते, क्या मोह से दूर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? भगवद गीता में भगवान ने कहा, भगवद गीता पढ़िए, हाँ हम शरीर नहीं आत्मा हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा कहां बीच में आ गई? हमें तो ज्ञान लेना है, ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर होगा, अज्ञान दूर होगा हम भगवान की सेवा करेंगे। तो ये भक्त कहां आ गए बीच में? भक्त कृष्ण की कृपा को हम तक लाने के माध्यम है। जैसे मैत्री मुनि ने कहा कि जब तक हम विरक्त भाव में कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कृष्ण की कृपा नहीं आएगी। तीन चीजें चाहिए, विरक्त भाव, भक्ति और कृपा। तो एक कृपा के माध्यम भक्त हैं। हम लोग रोज सुबह गाते हैं, संसार दावा नललीर लोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। वो भक्त वो गुरु जिन्होंने कृष्ण से प्राप्त कर लिया है क्या, कृपा। तो इसीलिए भक्तों की सेवा से भगवान की कृपा आती है, भक्त माध्यम है। और दूसरा कारण, ज्ञान प्राप्त कर लेना पूर्ण नहीं है, उसका साक्षात्कार जरूरी है और भक्तों की सेवा से वो साक्षात्कार होता है, ज्ञान का साक्षात्कार। तो इसीलिए भक्तों की सेवा आवश्यक है। तो भक्त माध्यम है। जैसे हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं, मान लीजिए आपका खेत है, आप खेत में फसल उगाना चाहते हैं लेकिन जल 10 किलोमीटर दूर है आपके खेत से, और जल का भंडार है, नदी बह रही है, लेकिन आपका खेत 10 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करेंगे? आप एक नहर बनाएंगे। नदी से एक नहर बनाई जाती है जो आपके खेत तक आती है, तो वो नदी का जल जिसमें अथाह जल है वो जल आपके खेत में पहुंच जाता है नहर के द्वारा। इसी तरह जीव है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा एक नदी के समान, समुद्र के समान है गुणार्णवस्य, और उस कृपा को हम तक पहुंचाने के माध्यम वो नहर, वो भक्त है। तो अगर वो भक्त नहीं होंगे तो कृपा रहेगी, हम अलग रहेंगे, लेकिन भक्तों के द्वारा वो कृपा आती, इसीलिए भक्तों की सेवा। और एक कारण है भक्तों की सेवा से हम प्रगति करते हैं, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों की सेवा से साक्षात्कार होता है, भक्तों की सेवा से कृपा आती है, भक्तों की सेवा से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। केवल सेवा से, कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि ने क्या किया था, उदाहरण है नारद मुनि का, उन्होंने तो केवल उन भक्ति वेदांतियों की सेवा की थी। 5 वर्ष का बालक क्या जानता था शास्त्र, कौन से उसने बहुत बड़ी तपस्या कर ली थी, छोटा सा बालक था। उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया, उनकी सेवा की। जब उनकी माँ उनके लिए कुछ लेकर आती, छोटा छोटा बालक ये भी लेकर आ जाता था, तो बस वही सेवा से वो प्रसन्न हुए, उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया बालक को। तो इसीलिए सेवा, और सेवा करने से भक्तों की हमारा अहंकार टूटता है। ये अहंकार है जो हमें भगवान से दूर रखे हुए हैं, ये अहंकार है जो हमें ज्ञान से दूर रखे हुए हैं, ये अहंकार है जो हमें मोह में रखे हुए हैं। और जिस दिन हम भगवान के भक्तों की सेवा प्रारंभ करते हैं, हमारा अहंकार चूर होना प्रारंभ होता है। कष्ट होता है लेकिन उसको सुख मानते हैं भक्त। भक्ति में भक्तों को कष्ट होता है लेकिन उस कष्ट को वो परम सुख मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा अहंकार चूर हो रहा है, हमारी श्रेष्ठता जिसको हम सोचते थे वो चूर हो रही है। इसीलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम क्या करेंगे, भगवान क्या करते हैं आध्यात्मिक जगत में, गायों की सेवा करते हैं। गाय कौन है, भगवान की भक्त है, इसीलिए तो आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवान भी खुद भक्तों की सेवा करते हैं, गाय चराने जाते हैं, गायों को लेकर आते हैं, साफ करते हैं, दूध निकालते हैं, ये भगवान करते हैं। तो क्या ये भक्तों की सेवा नहीं, इससे गायों को बड़ा आनंद मिलता। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, आवश्यकता नहीं है भगवान को। ऐसा नहीं है कि भगवान दूध नहीं निकालेंगे तो फिर बेचने नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, कमाई नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं है। घर में बहुत सारे सेवक हैं ये करने के लिए। इसीलिए दामोदर लीला के प्रारंभ में कहा गया, एक बार यशोदा ने सोचा कि मैं ही खुद मक्खन निकालती हूं। तो एकदा क्यों, क्योंकि बाकी टाइम तो बहुत सारे दास दासी हैं, वो काम करते हैं, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है कृष्ण को। लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए वो भक्तों की सेवा करते हैं। तो कृष्ण भी उदाहरण देते हैं कि हमें भक्तों की सेवा करनी, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, बलि महाराज के द्वारपाल बन गए हैं, तो उनको तो आनंद आता है भक्तों की सेवा में। तो जब भगवान भक्तों की सेवा कर सकते हैं तो हमें अहंकार क्यों। तो इसलिए विदुर इस बड़ी महत्वपूर्ण बात को यहां बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो मोह है, केवल भक्तों की सेवा से जा सकता है। और भक्तों की सेवा से वो ज्ञान, वो भगवद गीता भागवत का ज्ञान, वो हमारे हृदय में प्रवेश करके हृदय को शुद्ध कर सकता है। अन्यथा ज्ञान हम सुन सकते हैं, हमें कोई शुद्धता नहीं आएगी, कोई साक्षात्कार नहीं आएगा, केवल वो एक किताबी ज्ञान रह जाएगा बस। और ऐसे लोग हैं, इसका उदाहरण क्या है, वो मायावादी। क्यों वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, भक्तों से बहुत अच्छी तरह शास्त्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ के एक श्लोक के 50 अर्थ दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि भक्तों की सेवा नहीं करते इसीलिए भगवान को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए भगवान के प्रति वो अपराधी कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी अपराधी। तो अपराधी हैं क्योंकि भक्तों की सेवा नहीं करते। तो ऐसे विदुर जी ने बताया। और फिर विदुर जी आगे श्लोक में 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक प्रश्न करते हैं, बहुत सारे फिर और उन्होंने प्रश्न किए, क्योंकि अब जिज्ञासा बढ़ गई। देखिए जब हम थोड़ा बहुत भगवान के विषय में सुनते हैं तो और जिज्ञासा बढ़ जाती है, आगे क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान ने प्रवेश कर लिया, हो गया, जीव का भी मैंने सुन लिया, अब बताइए आगे का, भगवान कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, फिर कैसे ब्रह्मा जी मनुओं की उत्पत्ति करते हैं, फिर जो मनु होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे नियम बनाते हैं, फिर वर्णाश्रम कैसे होता है, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, जीव क्या क्या क्रियाएं करता है, क्या कार्य करता है इस भौतिक जगत में, सब विस्तार से बताइए। अभी भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए, आपने अभी तक किया नहीं है। तो ये सारे प्रश्न, अब जिज्ञासा बहुत बढ़ गई विदुर की। तो देखिए भगवान की कथा सही तरीके से सुनी जा रही है और सही उसका लाभ हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है और कथा सुनने की जिज्ञासा, रुचि। तो ये यहां हम लोग विदुर के उदाहरण से देखते हैं कि वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा आपने जो मेरे संशय थे दूर कर दिए, फिर कहा नहीं कि ठीक है मैं जाता हूं, हो गया सब, बहुत सुन लिया, समय हो गया प्रसादम का। विदुर जी ने कहा नहीं, और जिज्ञासा बढ़ गई। तो ये प्रमाण है अगर हमारा जप अच्छा हो रहा है या नहीं, ये देखने का प्रमाण क्या है, और जप करने की इच्छा है या नहीं, कि 16 माला के बाद उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती, मतलब रुचि नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि थोड़ा समय मिला, आधा घंटा मिला, 10 मिनट मिले, हमने तुरंत एक माला और कर लिया, फिर अवसर हुआ कि शायद थोड़ा और बीच में कहीं समय मिल जाए और 2 माला कर लें, और जपा में रुचि, और भगवान का नाम ले लें, सतत ले लें, माला की गिनती नहीं करें, तो रुचि वो है। यानी प्रमाण कि हमारा जप अच्छा हो रहा है या नहीं, इसका प्रमाण ये है कि हमारी रुचि कितनी बढ़ रही है जप में। तो इसी तरह भगवान की सेवा में भी, भगवान के श्रवण में हमारी कितनी रुचि हुई, ये महत्वपूर्ण। तो ये बतला रहे हैं विदुर जी, जिज्ञासा करके और प्रश्न किए उन्होंने, तो अब और विस्तार से बताइए ये जो जगत होता है, ये जो लोक होते हैं, अलग अलग लोक कैसे बनते हैं, ये जो पृथ्वी है क्या इसके परे भी कोई लोक है, क्या ऊपर भी कोई लोक है, नीचे भी कोई लोक है, तो इन सब का वर्णन कीजिए। और वर्णाश्रम में लोग कैसे रहते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, कैसे भगवान अवतरित होते हैं, भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, गुण अवतार लिए, हमने सुना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, तो उनका वर्णन कीजिए। तो अब वो विस्तार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब आगे बताइए, आपने थोड़ा बहुत बता दिया शुरुआत, अब कैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। तो ऐसे वो प्रश्नों को पूछने लगते हैं और अंतिम विभाग में श्लोक नंबर 39 से लेकर 42 तक विदुर जी पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं मैत्री मुनि में। और ये भक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, गुरु में श्रद्धा। तो वो कहते हैं आप ही मुझे, केवल आप ही मुझे ये सब बता सकते हैं, और आपके द्वारा, आपकी सेवा, आपके ज्ञान के द्वारा ही मैं मुक्त हो सकता हूं, मैं जान सकता हूं इन सब चीजों को। तो ये श्रद्धा वो दिखला रहे हैं। तो देखिए इस अध्याय में हालांकि देखा जाए तो कुछ प्रश्न हैं, जरा से उत्तर हैं, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण भक्ति के सिद्धांतों को विदुर जी ने प्रस्तुत किया। तो ये अंतिम विभाग में भी वो एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा गुरु में। तो हमें गुरु में, परंपरा में, कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास कि यही एक मार्ग है, ये मार्ग सही है, मेरे भगवान सही हैं, और ये जो मैं मार्ग ले रहा हूं ये सही है, मेरी गति सही है, मेरे मार्ग सही है। ये दो चीजों में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी गति अर्थात जो मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं वो एकदम सही है, और दूसरा उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है, प्रोसेस, वो भी एकदम सही है, वो गलत नहीं है। ये दो चीजों में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रोसेस क्या है? गुरु से सुनना, भक्तों की सेवा करना, गुरु के शब्दों में विश्वास रखना, ये मार्ग है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, श्री प्रभुपाद जब कुछ कहते थे उन्होंने विश्वास रखा। कुछ जानते नहीं थे, कृष्ण के विषय में नहीं जानते थे, भक्ति नहीं जानते थे, बस प्रभुपाद के शब्दों पर विश्वास। और कैसा विश्वास, अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गए। प्रभुपाद ने अपने अमेरिकन शिष्यों से कहा, जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो। उस समय में जब बहुत द्वेष था, अभी भी है, वो चले गए पाकिस्तान में प्रचार कर रहे। उनसे कहा चाइना में जाकर प्रचार करो, चाइना जहां अगर एयरपोर्ट पर आपके बैग में भगवद गीता देख ली जाए तो अरेस्ट कर लेते थे, आपको जेल में डाल देते थे। चाइना में जाके प्रचार करो। तो चाइना में प्रचार किया जाके भक्तों ने, शब्दों पर विश्वास। तो जिन्होंने भी श्रील प्रभुपाद के शब्दों पर पूर्ण विश्वास दिखलाया, आज वो भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर सके। और जिन्होंने नहीं दिखलाया, संशय किया, संशय आत्मा विनश्यति। तो यहां पर यही मार्ग वो बतला रहे हैं विदुर, कि किस तरह हमें पहले जिज्ञासा, इस पूरे अध्याय का सार लें तो इस अध्याय से हम सीख सकते हैं कि जिज्ञासा मन में होनी चाहिए भगवान के विषय में। लेकिन उस जिज्ञासा को समझने के लिए एक गुरु के पास जाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। जैसे मैत्री मुनि बताते हैं कि अज्ञान दूर होगा जब हम विरक्त भाव से भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की कृपा आएगी। और ऐसी भक्ति का मार्ग मैत्री मुनि ने बताया, भक्तों की सेवा, और जो श्रवण कीर्तन से प्रारंभ हो सकती है। तो भक्त श्रवण और कीर्तन करें, फिर भक्तों की सेवा करें, उसके द्वारा विरक्त भाव उत्पन्न होगा, भक्ति करेंगे, भक्ति के अन्य मार्गों का पालन, विरक्त भाव, और फिर कृष्ण की कृपा आएगी। और फिर विदुर जी समझाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, केवल भक्तों की सेवा के द्वारा। और अंतिम में वो समझाते हैं कि हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के, गुरु के, आचार्यों के शब्दों पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। तो प्रश्न किया था उन्होंने ब्रह्मा जी के विषय में इत्यादि, तो अगले अध्याय में ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं इसका वर्णन मैत्री मुनि करने वाले हैं। हरे